Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్వలాంగం పరసుమృగవర భీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణిర్ వ్యగ్రకృతిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుకం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్ గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞాన దేహాయ త్రివేది దివ్య చక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ఓం ఓం ఓం. కృష్ణ యజుర్వేదీయ శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషద్ మే ఛఠే అధ్యాయ కా 18వా మంత్ర హై. యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాశ్చ ప్రణోతి తస్మై తం హ దేవమాత్మబుద్ధి ప్రకాశం ముముక్షురు వై శరణమహం ప్రపద్యే. నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం నిరవద్యం నిరంజనం అమృతస్య పరం సేతుం దగ్ధింధన నివానలం. యదా చర్మవదాకాశం వ్యష్టయిష్యంతి మానవః తదా దేవం అవిజ్ఞాయ దుఃఖస్యాంతో భవిష్యతి. ఉపనిషత్ కా ప్రసంగ హై. जिसको जानने के बाद सभी दुख नाश हो जाते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर संसार में और कुछ पाना अवशेष नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद संसार में फिर जानना कोई अवशेष नहीं रहता. जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है, लेकिन उसको जाने कैसे? तो अनेक साधन बता दिया गया है. सभी साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन यह है, पहले तो यह कहा तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय. उसको जाने बिना दुख का अंत नहीं होगा, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बताया. अब ये कहते हैं कि उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए. तो यूं तो करने के लिए बहुत कुछ है, कर सको तो बहुत कुछ करने के लिए बताया गया है. यदि वे सब कर नहीं सको तो ये जरूर कर सकते हो, यह है शरणागति। वैष्णव धर्मों में ये महत्वपूर्ण वाक्य है श्रुति। परमात्मा ऐसा है कि उसको प्राप्त करने के पास पढ़ने के लिए हमारे पास साधन नहीं है और कुछ करने की हमारे पास शक्ति नहीं है। साधन और शक्ति के अभाव में हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो श्रुति ने कहा कि यदि साधन और शक्ति नहीं है तो उसके शरण में जाओ, वो तुम्हें साधन भी देगा और शक्ति भी देगा। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि शरण में जाने के बाद फिर हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि शरण में जाने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता। वेदांत के इस दृष्टि से भक्ति सिद्धांत में ये सब हो सकता है कि उसके शरण में जाने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन वेदांत की दृष्टि से शरण में जाने के बाद भी कुछ करना पड़ता है। जब कुछ करना ही पड़ता है तो फिर शरण में क्यों जाए? बोले कि वो करने की क्षमता तुम्हें है तो शरण में जाने की जरूरत नहीं, क्षमता नहीं है तो फिर शरण में जाना पड़ेगा। तो फायदा क्या हो गया? फिर शरण में जाने से काम बन जाता है तो फिर करने का? बोले नहीं, शरण में जाने के बाद भी करना अवशेष रहता है। तो शरण जाने का प्रयोजन क्या हुआ? तो बोले तुम्हें वो क्षमता और वो सामर्थ्यता की प्राप्ति होगी। तो यदि तुम वास्तव में मुमुक्षु हो तो मुक्त होने की इच्छा वाले व्यक्ति उसके शरण में जाएं, ताकि मुमुक्षु यानी मोक्ष के लिए सारी साधन वह तुम्हें उपलब्ध कराएगा। ये तो शास्त्र ने, वेदांत के उपनिषदों ने सर्वत्र परमात्मा के लिए ये कहा है कि वह मुमुक्षुओं को खुद साधन भी देता है और साधन भी करवाता है और उसको पूरा का पूरा उस साधन का फल भी प्रदान करता है। साधन भी वही बन जाता है और फल भी वही बन जाता है। तो ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सभी मुमुक्षुओं के लिए, सभी वेदांतियों के लिए, सभी भक्तों के लिए ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। विशेष करके कि परमात्मा के प्रति जिनकी निष्ठा और आस्था है उनके लिए है, और जो परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानता है उसके लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। चाहे वो सगुण साकार परमात्मा के स्वरूप को मानता हो, चाहे सगुण निराकार मानता हो, चाहे निर्गुण निराकार मानता हो। मंत्र यह है कि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्, जो परमात्मा जिसको तुम जानना चाहते हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वह जो परमात्मा उसने सृष्टि के आदि में पूर्वम, सृष्टि होने से पहले, सृष्टि के आदि में ब्रह्माणं विदधाति, प्रथम शरीरी ब्रह्मा को बनाया। अब प्रश्न ये होता है कि परमात्मा ने पहले भूत सृष्टि की कि चेतन सृष्टि की? कि पहले कौन सी सृष्टि की, भूत सृष्टि की कि चैतन्य सृष्टि की? प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर अलग अलग ढंग से दिया है। परमात्मा ने सबसे पहले भूत सृष्टि की, ये कई प्रक्रिया आप लोगों ने कई बार सुनी है इस बात को, कि उस परब्रह्म परमात्मा में माया वृत्ति के द्वारा संकल्प किया और माया में क्षोभ हुआ तो सबसे पहले महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व के बाद अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार के बाद पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुए और पंच तन्मात्राओं के व्यष्टि और समष्टि सत्वगुण और रजोगुण के द्वारा सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न हुआ और तमोगुण को आधार बनाकर पंचीकरण करके स्थूल भूत की रचना की। ये आप लोगों ने कई बार वेदांत की प्रक्रिया में इस बात को सुनी है। इसके बाद उसने क्या की तो बोले जीव सृष्टि, ये तो दो प्रवाह है परमात्मा से उत्पन्न होने में, एक जड़ सृष्टि भूत सृष्टि और दूसरा चैतन्य सृष्टि जीव सृष्टि। कहीं कहीं तो ये आता है कि दोनों सृष्टि बराबर करता गया, वो पैरेलल पर करता गया, वो भूत सृष्टि चैतन्य सृष्टि भूत सृष्टि, और क्योंकि जहां भूत सृष्टि समष्टि की तो वहीं समष्टि चैतन्य की प्रतीति हो गई, जहां भूत सृष्टि व्यष्टि की तो वहीं चैतन्य व्यष्टि सृष्टि हो गई, तो समानांतर में हुआ ये भी मानते हैं। और कहीं कहीं बताते हैं कि नहीं, पहले भूत सृष्टि की फिर जीव सृष्टि की, लेकिन जो भी हो जीव सृष्टि कैसे की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा करके क्रम से किया कि युगपत किया। आप लोग ब्रह्मसूत्र तो कई बार स्वाध्याय किए ही हो, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ ऐसा है कि उपनिषद में सभी मंत्रों पर जहां पर भी प्रक्रियागत संशय आदि होते हैं उन मंत्रों को आधार बनाकर विश्लेषण और विचार किया गया और निष्कर्ष में पहुंचे हैं। युक्ति और श्रुति के प्रमाण के माध्यम से ब्रह्मसूत्र एक निष्कर्ष में आपको पहुंचाता है, अन्यथा परस्पर विरोध श्रुति है, अन्यथा वो श्रुति का अर्थ नहीं खुलता है, अभिप्राय नहीं खुलता है। तो इस बात को ब्रह्मसूत्र में बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई है कि परमात्मा ने ये जो जीव सृष्टि की या भूत सृष्टि की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये क्रमबद्ध रूप में सृष्टि की कि युगपद की, तो ये दोनों चर्चा उसमें है। जैसे मुंडकोपनिषद में कहा परमात्मा ने ये सृष्टि युगपद की, माने एक ही साथ सारी सृष्टि की रचना की। यथा विश्वलिंगाः, ये मंत्र है मुंडकोपनिषद, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं एक ही साथ, उसी तरह उस परमात्मा से एक ही साथ सारा जगत जड़ और चैतन्य सब एक ही साथ प्रकट हुए। दूसरी जगह उदाहरण दिया है, जैसे स्वप्न में जो कुछ भी दिखा जाता है वो सब युगपद होते हैं, क्रमबद्ध रूप में नहीं होता। हालांकि आपको लगता है कि क्रमबद्ध रूप में हुआ है, जैसे स्वप्न में आपको घर बनाना है तो पहले आप जमीन खरीदोगे, जमीन खरीदने के बाद उसमें फिर वास्तु करोगे, वास्तु के बाद धीरे धीरे पहला बनाओगे, दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, अलग अलग फ्लोर बनाते जाओगे, मंजिल बनाते जाओगे। एक सामान्य जो व्यवहार में दिखता है क्रमबद्ध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, स्वप्न में भी स्वप्न देखते समय में ऐसा ही लगता है कि क्रम से बना रहे हैं, लेकिन उपनिषद का कहना है कि वह सब क्रम से नहीं है, सब युगपद है, क्योंकि वो क्रम से करने के लिए वहां वो समय ही नहीं है। उतने ही समय में सभी के सभी लग रहा है क्रम से किया है, लेकिन वो स्वप्न में सब सृष्टि युगपद किया है, एक ही साथ हुआ है। इसी तरह आपको लगता तो है कि परमात्मा ने जगत को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्रमबद्ध रूप में किया हो, ऐसा भी उपनिषद में प्रमाण है, मंत्र है, अग्नि का इस विस्फुल्लिंग के उदाहरण दिया। और कहीं कहीं ये कहते हैं कि नहीं, क्रमबद्ध हुआ है, पहले उसने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया। पहले महतत्व उत्पन्न हुआ, प्रकृति में जब विक्षेप हुआ, गुण में विषमता आई, परमात्मा के संकल्प से उसी गुणसाम्य प्रकृति माया में विषमता आई, विषमता आना ही महतत्व के रूप में एक वस्तु तैयार हो गया। और वेदांत ने उस महतत्व को समष्टि बुद्धि कहते हैं। और उसके बाद अहंकार पैदा हो गया, तीन प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, एक क्रमबद्ध रूप में सृष्टि का विकास हुआ, ये श्रुतियां हैं। आकाश उत्पन्न, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से फिर सारे संसार के प्राणी देह तैयार हुए, तो उस प्राणी देह में प्राणी उत्पन्न हुए, आत्मा उत्पन्न हुए। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्या दन्न संभव। ये अर्जुन, ये सारे के सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हुए हैं। अब सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अन्न से पहले प्राणी नहीं थे, ये मानना चाहिए। अन्न से पहले प्राणी नहीं थे, अन्न के द्वारा तब प्राणी उत्पन्न हुए। अन्न से प्राणी कैसे हुए तो प्रश्न किया कि, तो उत्तर दिया कि क्योंकि वो अन्न को खाया माता पिता ने, फिर उससे बच्चे पैदा हो गए। अरे इतनी माता पिता कहां से पैदा हुए, किसने खाया अन्न को, फिर माता पिता पैदा हुए। तो इसकी परंपरा अनिर्वचनीय है, इसीलिए कहा है कि ये सब परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्, उस परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा, यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द को वेदांत में हमेशा प्रथम शरीरी इस शब्द से संबोधन करते हैं। ये हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कई बार आप लोगों ने सुना हो, ये शब्द का अर्थ क्या है तो बोले तमाम चेतना यानी जीव सृष्टि के क्रम में परमात्मा ने सबसे पहले जो रचना की थी वो था हिरण्यगर्भ। अब पुराणों के भाषा में उसी को ब्रह्मा कह देते हैं, क्योंकि वहां विष्णु के द्वारा सारा सृष्टि दिखाना है, इसलिए विष्णु ने ब्रह्मा की रचना की। पुराण की भाषा तो यह है, लेकिन उपनिषद की भाषा यह है नहीं है कि पहले उसने ब्रह्मा की रचना की, फिर विष्णु की रचना की, फिर शिव की रचना की, या पहले शिव को बनाया, फिर विष्णु को बनाया, फिर ब्रह्मा को बनाया, ऐसा नहीं है। इसमें क्रमबद्धता नहीं है, कौन पहले बनाया, कौन बाद में बनाया, ऐसा नहीं। परमात्मा माया वृत्ति से जहां जिस समय जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहां उस समय उसका संकल्प करके उसको सिद्ध करता है। तो यह सिद्ध नहीं होगा कि विष्णु बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। ये पुराणों के भाषा में भले ही आपको ये लगे, लेकिन पुराण भी ऐसे हैं कि परस्पर एक ही व्यक्ति के लिखे हुए पुराण, वेदव्यास के लिखे हुए पुराण में ये परस्पर विरोधाभास आ जाता है। जब शिव पुराण पढ़ने लगोगे तो शिव ही सबसे बड़े हैं, शिव ने ही विष्णु को पैदा किया, विष्णु से ही ब्रह्मा पैदा हुए, इंद्र आदि सभी विष्णु माने शिव से पैदा हुए हैं। लिखने वाले वही वेदव्यास जी हैं, उसका आधार वही वेद है। और जब विष्णु पुराण पढ़ने लगते हैं तो फिर वो विष्णु के सब कुछ, विष्णु अनादि अनंत है और विष्णु से ही शिव पैदा हुए, विष्णु से ही ब्रह्मा पैदा हुए, विष्णु से ही इंद्र कुबेर वरुण आदि सब पैदा हुए। तो ये सारी चीज किससे कौन पैदा हुए हैं ये अनिर्वचनीय है। तो कुछ दिन पहले जिज्ञासु ने पूछा था कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो हमने कहा अब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये पूछते जाओगे, ये अनिर्वचनीय है, इसका अंत होने वाला नहीं है। तुम्हें इतना पता है कि नहीं ये हुआ है, तुम्हारे सामने जो समस्या है वो इतना पता है कि नहीं। और यदि समस्या नहीं है तो फिर जिज्ञासा की भी कोई जरूरत नहीं है। जब समस्या ही नहीं है तो जानने की इच्छा जिज्ञासा का क्या मतलब होता है? और कोई समस्या है तब फिर उसको जानना चाहिए। और ये भी है कि समस्या है और जानना चाहिए, जानते हुए खोजी करते हुए उसका अंत पता नहीं चलता है तो फिर वह भी अति आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्या करना है? बोले जो समस्या की तुम्हें प्रतीति हो रही है उसका समाधान चाहते हो तो जिस तरह उसका समाधान होवे उसी तरह कर लो। यही उपाय है। हमने उदाहरण दिया था पहले के जमाने में, आजकल भी होता है बंबई में। पहले तो घर में, गांवों में लकड़ी और घासों के घर बनाया जाता था, तो छोटे छोटे प्रसंगों में आग लग जाती थी। थोड़ी असावधानी हुई कि आग लग गया, तो भाई आग लग गया घर में तो फिर ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि ये घर में जो आग लगी है वो दिया सलाई की आग से है कि लाइटर की आग से है कि गैस की आग से है कि चूल्हे की अग्नि की आग से है कि कौन से आग से लगी है, कैसे लगी है, पूर्व से लगी कि पश्चिम से लगा, किधर से अग्नि लगी, ये सब अनुसंधान करने लगोगे तो वो समाधान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा कि बस जैसे मिले कि अग्नि का शमन करने का एक ही उपाय है कि पानी डालो। बस पानी डाल के अग्नि को बुझा लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा आग किधर से लगी है, अनुसंधान करते रहना। और जरूरत भी क्या है भाई, जरूरत भी क्या है, आग बुझ गई खत्म हो गया। बोले नहीं नहीं अनुसंधान करेंगे ताकि आगे इस प्रकार की घटना न हो। हर दुर्घटना में एक आयोग नया गठन किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये आयोग ये निश्चय करे कि इस तरह ये घटना घटी है और उस आयोग की रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा, तब आगे उस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। तो हर बार प्लेन क्रैश होते हैं, आयोग बैठता है, प्लेन क्रैश होते रहते हैं, वो रिपोर्ट कोई काम नहीं करती है। हर बार ट्रेन दुर्घटना होती है, आयोग बिठाया जाता है और ट्रेन दुर्घटना होती रहती है। हर बार अनुसंधान होता है, इस तरह ये घटना घटी है, ऐसा हुआ, फिर भी वो घटना घटती ही रहती है। तो ये वेदांत जो है, जो घटना घट गई है, जो समस्या आ गई है, उसका समाधान करो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्। देखो वेदांत का ये लक्ष्य रहा है कि वास्तव में ये हुआ है कि नहीं, ये विचार करना वेदांत का लक्ष्य नहीं है। यदि तुम ये हुआ है मानते हो तो वो इस तरह हुआ है, इतने बता देना वेदांत का लक्ष्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह ही हुआ है, इसको अकट नियम मानना यह वेदांत का लक्ष्य नहीं है। यह तो तुम्हारी धारणा से वेदांत परिभाषा करती है। तुम जिस भूमिका में हो उसी भूमिका में से वेदांत उसको विचार करने के लिए आरंभ करते हैं। तुमने जगत को सत्य माना है तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ये जिज्ञासा करते हो तो फिर उसका कई कुछ अंश में उसके कारण आदि की परंपरा दिखा देते हैं और तुम्हें संतुष्टि हो जावे तो वो ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो जाए। शरीर कैसे बना ये तुम पूछते हो तो बता दिया गया है कि ये रजवीर्य के सम्मिश्रण से है। रजवीर्य कैसे बना तुम पूछोगे तो कह दिया गया कि अन्न भक्षण आदि से है। वो कैसे बना तो बोले पृथ्वी से है। पृथ्वी कैसे बनी तो करते करते जाओ तो उसी परमात्मा में जाकर कह देते हैं वो परमात्मा से ये परंपराया बनी है। अब इसमें तुमको समाधान हो गया तो हो गया, हुआ नहीं तो परमात्मा फिर कैसे बना है तो फिर अति प्रश्न हो जाएगा। फिर तुम कहेंगे कि जाओ, तुम भी जाओ, परमात्मा भी जाए है? क्योंकि अविचार है ये, अति प्रश्न हो जाता है। तो एक तुम जब इसको सत्य मानते हो तो दूसरी बात यह है। अब इसको तुम सत्य नहीं मानते हो तो फिर विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि यह शरीर कैसे बना, फिर अन्न कैसे बना, पृथ्वी कैसी बनी, तो फिर उसके लिए विचार करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम इसीलिए कहा है कि जगत वास्तव में बना भी नहीं है, इसीलिए जगत के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि विचार ही करना है तो इस तरह बना है, इसीलिए अध्यारोप और अपवाद है वेदांत की प्रक्रिया। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, सृष्टि के पहले सबसे पहले उस परमात्मा ने नित्य निरंतर विभु व्यापक जो अखंड चैतन्य रूप सत्ता मात्र था, उस परमात्मा ने माया के आश्रय से सबसे पहले माया वृत्ति से संकल्प करके समष्टि जीव के रूप में प्रथम शरीरी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यो वै वेदांश्च प्रयणोति तस्मयी, और उसी परमात्मा ने अपने में अव्यक्त रूप में लीन होकर रहे हुए सारी वेद राशि को उस परमात्मा के यानी उस हिरण्यगर्भ प्रथम शरीरी ब्रह्मा के सामने परमात्मा ने प्रकट कर दिया। इसीलिए तो गीता में कह दिया है ना, सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धुम ये सब अतिष्ठ कामधु। जब प्रथम शरीर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को बनाया, उसके बाद तुरंत परमात्मा ने अपने में लीन होकर रहा हुआ सारे वेद राशि को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दिया। और ये बात पुराण की भी भाषा में, भागवत में भी ये प्रसंग आता है, जब कुछ नहीं था, जल ही जल था, तब अचानक परमात्मा के संकल्प से नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये भागवत आदि पुराण का प्रसंग है। तो इस पृथ्वी में जब महाप्रलय होकर जल ही जल था, वहां कोई जीव नाम के कोई चीज नहीं था, कोई जीव नहीं थे, सभी परमात्मा में लीन हुए हुए थे। तब परमात्मा ने फिर ब्रह्मा जी कमल के द्वारा, नाभि कमल द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो पहला जीव है ब्रह्मा।